श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 18। मेरे पीछे बोलिए, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं गेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्। यहाँ पे जितने भी श्लोक हैं इसमें गेयम मतलब जानने योग्य वस्तु के बारे में चर्चा हो रही है इस पूरे अध्याय में, और जानने योग्य वस्तु केवल दो ही हैं, आत्मा और परमात्मा भगवान। तो अभी जितने भी श्लोक हैं उनमें परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। आत्मा के बारे में बताया था श्लोक क्रमांक 13 में, जिसे बता रहे आत्मा अनादि है और भगवान के अधीनस्थ है। अधीनस्थ है मतलब दास है। और उसके बाद जितने भी श्लोक हैं वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे जरा भगवान के बारे में गुणों को देखेंगे। एक गुण यहाँ बता रहे हैं, वे ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। जैसे आप ये बल्ब देख रहे हैं तो बल्ब का स्रोत क्या है? करंट। करंट का स्रोत क्या है? पावर हाउस। पावर हाउस का स्रोत क्या है? कोल। कोल मतलब कोयला, और कोयले का स्रोत है सूर्य। समझ गए? तो इसी प्रकार से अब ऐसे अगर आप ट्रैक करें तो आप बोल सकते हैं कि ये जो बल्ब है इसका स्रोत है सूर्य। समझ में आ गया? अब सूर्य का स्रोत क्या है? भगवान। तो यानी कि आप इस जगत में कुछ भी प्रकाश देख रहे हैं तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसके स्रोत हैं भगवान, और उनका उनके प्रकाश का स्रोत कोई नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। तमसः परम उच्चते, वहां पे इस शब्द को समझा रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। भौतिक अंधकार, ये इंटरेस्टिंग है। अगर इस जगत में प्राकृत रूप से लाइट की व्यवस्था ना हो तो ये जगत अंधकारमय ही है। कभी सोचिए अगर सूर्य नहीं होता तो कैसा होता, कितना गुप्त अंधकार है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जनरली आजकल गुप्त अंधकार दिखता नहीं, गांव में कभी कभी दिखता है, जब लाइट चली जाती तब आप पूरा तारों को इत्यादि सब देख सकते हैं, अन्यथा गुप्त अंधकार प्राय दिखता नहीं, बहुत बहुत रेयरली आजकल दिखता है। लेकिन ये जगत अंधकारमय है। अगोचर अर्थ है, समझ लेना चाहिए, इंद्रियों के परे है। इससे पहले मैंने समझा दिया था पिछले श्लोकों में कि इंद्रियों के परे है मतलब भौतिक इंद्रियों के परे, लेकिन अगर इंद्रियों में प्रेम होता है तो वो भगवान दृष्टिगोचर हो जाते हैं। एक चीज समझ लीजिए, जैसे आप रेडियो वाला एग्जांपल समझते हैं, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी के जो वाइब्रेशन है, जो भी आउटपुट है, ये टीवी वाला एग्जांपल ले लीजिए, अगर टीवी खराब है तो स्वरूप टीवी में प्रस्तुत नहीं होता है। लेकिन अगर टीवी ठीक है और आपने ट्यून कर दिया तो जिस चैनल को ट्यून करेंगे वो दृश्य आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर प्रेम है हृदय में तो भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, और अगर प्रेम नहीं है तो साक्षात्कार नहीं होगा। यानी इन्हीं इंद्रियों के से अगोचर है और इन्हीं इंद्रियों से गोचर नहीं, समझा रहा? लेकिन इन्हीं इंद्रियों का मतलब ये इंद्रियां जो शुद्ध हो जाती है। आपको प्रभुपाद जी की आंखें कुछ अलग लगती हैं, प्रभुपाद जी की आंखें वैसे ही लगती हैं, लेकिन उनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, क्योंकि देखते हम लोग मन से हैं, खाते हम लोग मन से हैं। समझ में आ रहा है? मतलब उसका अनुभव जो कर रहे हैं वो हमारे मन के द्वारा होता है। भले ही हम जीभ से खा रहे हैं लेकिन आंतरिक इंद्रिय जो मन है उसके द्वारा अनुभव करती है। नहीं तो उसी वस्तु को एक व्यक्ति बोलेगा अच्छा है, जिसकी जीभ भी वैसे ही 6 इंच की है, और दूसरा व्यक्ति बोला खराब। वही हरि नाम एक व्यक्ति को बड़ा कष्टकारी लग रहा है करने में, एक व्यक्ति कहता है हाँ क्या आनंद के सागर में डूब रहा हूँ, क्योंकि उसके हृदय से मन से चित्त से गंदगी चली गई। समझ तो रहे हैं ना बात? वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान मतलब जानने योग्य हैं, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। इसके संबंध में राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे कि हृदय में स्थित है, ऐसा नहीं बंदी बने हुए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपितु हृदय में रह करके सबको कंट्रोल कर रहे हैं। ये कभी कभी आपको दिखाई पड़ेगा, उसके लिए आप कर सकते हैं एक गाड़ी में, कभी हमारे संग आप टवेरा में लौटिएगा, और जो शीशे बंद रहते हैं अगर दिन में कभी आप जाएं देखें तब आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे हर व्यक्ति कंट्रोल्ड है। वो पता ही नहीं चल रहा उसके जीवन में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, और वो समझ रहा है कि मैं पूरी तरह कंट्रोल में हूँ, लेकिन वो प्रकृति के गुणों के द्वारा पूरी तरह कंट्रोल्ड है और अंततः भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, और अमेजिंग बात इसका उदाहरण दिया जा रहा है कि कंट्रोल हमेशा अंदर से किया जाता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में जो ड्राइवर है वो अंदर से बैठ के कंट्रोल कर रहा है, हवाई जहाज वाला अंदर से बैठ के कंट्रोल कर रहा है, और हवाई जहाज वाला दिखाई भी नहीं पड़ता है पायलट। तो अभी देख रहे हैं कि भगवान हृदय में बैठे हैं। इस श्लोक से क्या हम समझ रहे हैं कि हृदय सर्वस्य विश्रुतम, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। तो सही बात है, जब तक भगवान प्रेरणा नहीं देंगे कोई भक्ति भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो प्रेरणा तब देंगे जब कोई व्यक्ति सेवा कर दे, अनजाने में ही कुछ भगवान की भक्ति कर दे तब भगवान उसको प्रेरणा देते हैं। जाओ जाकर कुछ क्लास सुन लो, या कुछ भगवान का भजन कर लो, जप कर लो, या वृंदावन आ जाओ, ऐसे कुछ भी, और भक्ति में प्रोत्साहन देते हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि, और ये भी आप सभी जानते हो कि जो भी हमारे हृदय में ज्ञान अज्ञान है उसका प्रकाशन या उसका निरस्तीकरण, समझ रहे हैं, जो ज्ञान का प्रकाशन और अज्ञान का जो निरस्तीकरण है वो सब कुछ भगवान ही करते हैं, या ज्ञान में भी डालते हैं तो भगवान ही डालते हैं। बातें आप सबको पता है, तात्पर्य को देखिए। परमात्मा या भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश सूत्र हैं, ये हम समझ चुके हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, मतलब भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज है, इसलिए वहां पर सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वहां सूर्य चंद्रमा होते हैं, वो वहां जाके मालूम चलेगा, इस पर कोई खास प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। ये जो ब्रह्म ज्योति है वो हमारी इंद्रियों के लिए इनविजिबल है, इस रूम में भी इस जगह हर जगह ब्रह्म ज्योति व्याप्त रहती है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारी इंद्रियां भौतिक तत्वों से दूषित रहती हैं। चेतन महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाते हैं उद्धार करने के लिए, तो अपना तेज प्रकाशित करते हैं। क्या तेज था नहीं उनके पास? था। ये बहुत अच्छा, एक जगह टीका में लिखते हैं नवा अध्याय में, भगवान अपनी ही शक्ति से, ये असंभव है, लेकिन अपनी ही शक्ति से अपने तेज को ढक लेते हैं। बहुत अद्भुत बात है। जैसे रसगुल्ले से हम स्वीटनेस को नहीं निकाल सकते, लेकिन भगवान स्वीट हैं, लेकिन अपनी ही शक्ति से अपनी स्वीटनेस को ढक लेते हैं अब भक्तों के लिए, और अपनी ही शक्ति से भक्तों के हृदय में, भक्तों की इंद्रियों के लिए अपनी स्वीटनेस को प्रकाशित करते हैं। स्वीटनेस समझ ना, माधुर्य को प्रकाशित करते हैं। ये भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। ठीक है, अतएव इस जगत में हमें सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। इसको कोट किया है, न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कूतो यम अग्नि। तो ये समझ में आ रहा है, न वहां पे सूर्य की प्रकाश होता है, न तत्र मतलब वहां सूर्य भाति, न चंद्र तारकम, न चंद्रमा न तारक, तारा मतलब तारागण के प्रकाश की आवश्यकता होती है, न इमा विद्युतो समझते हैं, विद्युत मतलब बिजली, वहां बिजली से भांति मतलब उससे कुछ प्रकाश नहीं होता, कूटो यम अग्नि मतलब अग्नि की भी जरूरत नहीं होती, तद एव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। ये प्रभुपाद को बहुत बार कोट करते हैं कठ उपनिषद का, तस्य भाषा, भाषा मतलब उनकी प्रभा, उनके जो उनका तेज है, सर्वम इदम विभाति, उसको सभी को प्रकाशमान करती। तो प्रभुपाद उस श्लोक को कोट नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे अर्थ आप पढ़ रहे हो देख रहे हो। इस जगत में सूर्य चंद्र बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। देख, तब देख रहे हैं प्रभुपाद जी भले ही उस श्लोक को कोट नहीं किए हैं, लेकिन उसका अर्थ यहां पर रख दे रहे, नहीं तो वो विस्तार बहुत हो जाता उसका। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। कौन सा वैदिक साहित्य? कठोपनिषद, जो भी हमने कोट किया। ओके, अतः यह स्पष्ट है कि वह इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है, वे तो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इसको भी गीता भूषण में कोट किया गया है, वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। अब ये देखिए, हमारी एक डिफिकल्टी है कि हम जब सोच रहे हैं कि बोला गया है सूर्य के समान तेजोमय, तो हम सोचेंगे पीली रोशनी वाले हैं क्या, वो क्या रोशनी है, वो पीला सफेद, जो भी आप कल्पना करेंगे वो उसके परे है, क्योंकि ये सब भौतिक धारणाओं से युक्त है। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में परवर्टेड कॉग्निशन। परवर्टेड मतलब विकृत, कॉग्निशन मतलब सोच, ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति की शक्ति, वो पूरी तरह घूम चुकी है। तो भौतिक वस्तुओं की ही धारणा हम कर सकते हैं, इसलिए आध्यात्मिक वस्तुओं की धारणा कर पाना, समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। बट शाखा चंद्र न्याय के अनुसार, समझते हैं इसका अर्थ? बच्चा पूछ रहा है, माँ चंद्रमा कहाँ है? तो माता कहती है चंद्रमा नीम के पेड़ के बीच में है। क्या चंद्रमा नीम के पेड़ के बीच में? और हम लोग भी सामान्य भाषा बोलते हैं सूर्य उग गया, या हम लोग बोलते हैं वो सूर्य बिल्डिंग के पीछे। सूर्य बिल्डिंग के पीछे तो बिल्डिंग रह पाती नहीं, रह पाती, लेकिन समझाने के ऐसा बोला जाता। ओके, उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो घनीभूत दिव्य ज्ञान है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी समझना बड़ा मुश्किल है, कि भगवान का स्वरूप ही ज्ञानमय है, और इस कारण से भगवान के स्वरूप पे ध्यान करने से व्यक्ति का हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगर आप तीसरा स्कंध पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कैसे भगवान के भवों पे आपको ध्यान करना है, नासिका पे ध्यान करना है, कान पे ध्यान करना है। तो क्यों करना है? उससे हृदय का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा बोला जाता है उसमें, कि जो हमारे हृदय का ज्ञान है कई जन्मों से, उस पर वज्रपात होता है, कठोर वज्रपात होता है अगर भगवान के रूप का ध्यान करता है। तो इसलिए हमारे लिए ऐसे तो ध्यान आवश्यक नहीं है, इन द सेंस ऐसे तो रूप का ध्यान करने का तुरंत नहीं बोला जाता है, पहले हृदय को शुद्ध करना होता है तभी वो रूप टिक सकता है। लेकिन हमारे लिए मुख्य ऐसे भगवान के विग्रह के दर्शन करें तो उसको विभिन्न प्रकार के जो भगवान के अंग हैं उस पर ध्यान करना चाहिए। अभी ध्यान करने का मतलब ही नहीं आंखें बंद कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हम जब भगवान के सामने हैं, विग्रह के सामने, तो क्या ध्यान करना चाहिए, क्या मेडिटेट करना चाहिए? तो क्या प्रभुपाद जी बोला, मेडिटेट करने की क्या जरूरत है, सामने आपके हैं तो आप देखिए, बस उनके भगवान के विभिन्न अंगों को देखना चाहिए। तो यही से इसी से हमारा शुद्धि हो जाती है। जो वैकुंठ लोग जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। इसको थोड़ा समझ देना चाहिए। देखिए दो तरह से, पहली बात, हमारे जीवन में भगवान शास्त्र के रूप में आते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि आप वैदिक वैकुंठ जाने के इच्छुक हैं और आपको ऐसे ही हृदय में भगवान का ज्ञान देना चालू कर देंगे। वो भी देंगे, एक स्टेज पे देते ही हैं, लेकिन पहले समझिए कि वैकुंठ जाने के इच्छुक होंगे क्यों, जब आप शास्त्र से सुनेंगे तभी तो उसके अनुसार जब भजन करेंगे तो फिर भगवान और ज्ञान देते रहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं श्रद्धा कैसे आए, देखिए स्पष्ट है, भगवान बोलते हैं जो प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। गीता में आपको याद होगा, तेषाम येषाम नित्य भी युक्ता नाम, नहीं भूल रहा हूँ श्लोक, लेकिन उसमें शब्द आता है प्रीति पूर्वतम, भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते। तो भगवान हमारे हृदय में है जब हम प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, निष्काम भावना से, प्रेम करने की भावना से भगवान का भजन करते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं जो प्रेमी हो और उनके मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं, भले ही शुरुआत में प्रेम नहीं हो, तो भगवान इस प्रीति पूर्वक भजन का बदले में क्या देंगे, रिवॉर्ड, हमको बुद्धि देते हैं तुम ये करते रहो, ये श्रद्धा देते रहते, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, इसके द्वारा तुम मेरे पास आओगे। समझ में आ रहा है? शास्त्रों के द्वारा, साधुओं के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, हाँ हमको सही लगता है तभी समझ लेना चाहिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, और उसके बाद लगातार भगवान आपको प्रेरणा देते रहेंगे, अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। प्रेरणा देने का मतलब आपको अपने जीवन में अनुभव होगा कि इस प्रकार का हिंट देने भगवान, अब ये करो, अब गीता पढ़ो, अब भागवत पढ़ो, अब ऐसे करो, ये अब जब करो, इस प्रकार के। ऑब्वियसली ये जरूरी नहीं कि हृदय में डायरेक्टली बोले, साधु के मुख से भी बोल सकते और आपको हिट कर जाएगी, बता मुझे जब अच्छे से करना, भक्ति करनी है। तो मेन बात है जब वैकुंठ जाने की इच्छा होगी व्यक्ति की, जीव की, तो भगवान इस प्रकार की प्रेरणा देंगे और किसी के मुख से भी दे सकते हैं, ये बात भी है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिएगा। एक वैदिक मंत्र है श्वेता शतर उपनिषद में, तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुवैर शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान की शरण में जाए। जहां तक आपको याद हो, हम लोगों ने श्रद्धावान में भी चर्चा किया था कि मुक्ति केवल भगवान के पास है और इसलिए वही दे सकते हैं, और ये भी अमेजिंग बात है कि ना मांगने पे भी देते हैं। अगर उपासक ना भी मांगे तो भी अल्टीमेटली भगवान मुक्त कर ही देते हैं। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांगा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझ लेता है, तम एव मतलब भगवान को जाने बिना व्यक्ति मृत्यु को लांग नहीं सकता। तो आप कहेंगे कि मृत्यु को कैसे लांगे, क्या उत्तर होगा? भगवान को जानना। और भगवान को कैसे जानते हैं? भक्ति से। और भक्ति जितनी बढ़ जाती है उतनी मात्रा में और अधिक हम भगवान को समझ पाते। इस संबंध में छोटा सा कमेंट है कि जितनी मात्रा में भक्तों को भगवान से विरह अनुभव होता है प्रेम के कारण, उतनी ही मात्रा में भगवान का ऐश्वर्य उनको और अधिक समझ में आता है। ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों, बहुत गंभीर बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गोपियां नहीं जानती कि कृष्ण भगवान है। मैं उस दृश्य में जाना नहीं चाहता, लेकिन जब भगवान दूर रहते हैं तो वो समझते हैं कि भगवान है। उनकी ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, माधुर्य भी प्रकाशित होता है, लेकिन जब भगवान पास में आ जाते हैं तो माधुर्य ऐश्वर्य को ढक लेता है। खैर, ये सब चीजें तो बड़ी गंभीर हैं, लेकिन इसको चैतन्य महाप्रभु के केस में भी बताते हैं कैसे वो उसे जो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनना चाहते हैं सनातन गोस्वामी, तो ऐश्वर्य बताते बताते फिर वो माधुर्य बताने लग जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ प्रेम के कारण हो रहा है। तो जब प्रेमी व्यक्ति होता है तो उसको भगवान के ऐश्वर्य भी समझ में आते हैं और माधुर्य भी समझ में आता है। इस चीज को सातवें अध्याय में भी भगवान गीता में बोलते हैं, ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम इदम वक्षाम अशिष्यतः यज ज्ञातवा नेह भूयो अन्य ज्ञातवम अशिष्यते। ज्ञान मतलब भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान, और विज्ञान मतलब भगवान के माधुर्य का ज्ञान। तो दोनों ही चीज कहां से प्राप्त होगा? मैया सक्त मना पार्थ, जिस व्यक्ति का मन भगवान में आसक्त होगा। और किस व्यक्ति का मन भगवान में आसक्त होगा? इसको प्रेम होगा। तो आप समझ गए ना फॉर्मूला, भगवान को जानने का अर्थ है भगवत प्रीति। जितनी भगवत प्रीति होगी उतना ही भगवान को हम जान पाएंगे, क्योंकि उतना ही भगवान अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे, अपने ऐश्वर्यों को प्रकट करेंगे। जैसे आप लोग कई बार पूछते होंगे या सोचते होंगे कि कैसे समझे कि हम भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, तो क्या उत्तर है? जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे समझेंगे हम शरीर से भिन्न है? भिन्न है, अभिन्न नहीं, भिन्न है। भक्ति बढ़ेगी अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या कैसे मालूम चलेगा हमारा स्वरूप क्या है? जब भक्ति बढ़ जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। ये मैंने समझा दिया था पहले ही आपको कि जैसे कोई ड्राइवर अंदर बैठ के कंट्रोल करता है, ऐसे भगवान कंट्रोल करते हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसको समझ लेना चाहिए कि भगवान सभी के हृदय में है, सब जगह व्याप्त है, पिछले वाले श्लोकों में मैंने समझा दिया है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का कंट्रोल सब जगह है या सब जगह भगवान व्याप्त है तो भगवान की अपनी सत्ता समाप्त हो गई, ऐसा नहीं आप कह सकते। जैसे वही एग्जाम्पल है कि पेपर को आप फाड़ दीजिए तो पेपर की सत्ता समाप्त हो जाती है कि नहीं? टुकड़ों में हो जाता है। लेकिन ऐसा भगवान के संग नहीं होता। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में दिया गया था, सूर्य ऊपर है, सब जगह बहुत सारे मटके ले लीजिए, उस पर पानी है और सूर्य उस पर प्रतिबिंबित हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य की अपनी सत्ता समाप्त हो गई। तो भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं और कंट्रोल करना है इस जगत को, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की सत्ता समाप्त हो गई। और उनके हाथ पैर सब जगह हैं, अर्थात उनका कंट्रोल सब जगह, हाथ पैर सब लोग कंट्रोल करते हैं, तो इससे आप समझ सकते हो कि भगवान सबको कंट्रोल कर रहे हैं। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। कार्य क्षेत्र अर्थात हमारा शरीर, जैसे इस रूम में हम लोग बैठे हैं तो हम लोग इस रूम को जान रहे हैं, या खेत समझते हैं कार्य क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र का मतलब है खेत। तो खेत को जानने वाला राजा भी होता है और खेत को जानने वाला ग्रामीण भी होता है, लेकिन ग्रामीण केवल अपने खेत को जानता है और राजा सारे खेतों को जानता है। और सब जानते हैं कि जो राजा है सारे खेत जो है वो राजा के ही हैं, समझते हैं ना इसको? ठीक है, ये उदाहरण पहले दिया गया था। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान पर सीमित एक देशी है, मतलब मेरे हाथ पैर मेरे शरीर तक ही है, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, हर जगह वो जा सकते हैं। जैसे मैं बोलूं प्रभु जी मेरे लिए प्रसाद लेके आओ, आप ला सकते हो प्रसाद यहीं बैठे बैठे? ऐसे नहीं, मुझे जाके वहां जाकर के लाना पड़ेगा। यानी मेरी इंद्रियां स्थान के द्वारा, शब्द आता है परिच्छिन्न है, मतलब मेरे लोकलाइज्ड हैं, लेकिन भगवान के जो इंद्रियां हैं वो पूरी तरह से डीलोकलाइज्ड हैं और लोकलाइज्ड भी हैं। डीलोकलाइज्ड भी हैं और लोकलाइज्ड भी हैं, मतलब भगवान अपने जगह पे भी हैं और सब जगह भी व्याप्त है। ऐसे नहीं कह सकते कि आप यहां से भोग लगाओगे तो भोग नहीं स्वीकार कर सकते। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभुमीशानाम सर्वस्य शरणम बृहत, यानी वो सभी के प्रभु हैं और सभी के शरणम है, और शरण है और बृहत मतलब महान है। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। ये बात क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? आचार्य लोग इस बात को समझाते हैं कि श्लोक क्रमांक 13 में जीव का वर्णन हुआ है, लेकिन 14 ऑनवर्ड्स केवल भगवान का ही वर्णन हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब बोला जा रहा है सब जगह उनके हाथ पाँव है, तो कभी कोई सोचे कि जीव जो है अभी जब अज्ञान में है तब तो वो अभी नहीं समझ पा रहा, अन्यथा उसकी इंद्रिय सब जगह हैं। ये गलत है। जीव का केवल दो गुण यहाँ पर वर्णन हुआ है, एक है वो अनादि है और दूसरा है अधीन है। तो इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, नित्य मतलब शाश्वत। अरे अमेजिंग है यार, ये श्लोक तो बिल्कुल रिलेटेड है। कृष्णेर नित्य दास मतलब कृष्ण का दास है, अधीन है, और नित्य मतलब शाश्वत यहाँ पे लिखा गया है। आप 13वें श्लोक को देखेंगे, अनादि मत परम ब्रह्म न तत् न सत तन्नास उच्यते, कि मत परम मतलब मेरे अधीन है और अनादि मतलब शाश्वत है। ऐसा अमेजिंग, ये श्लोक एग्जैक्टली यही श्लोक चतुर महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को समझाया था। कोई प्रश्न है इस संबंध में? कंसेंट्रेटेड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। ब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, तो उनका जो विग्रह है वो कैसा है? सत चिद आनंद, चिद मतलब ज्ञानमय। तो इस जगत में आप कोई रूप देखते हैं तो क्या वो ज्ञानमय है? ऐसा नहीं है। उसको रूप को देखने मात्र से हमारा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन भगवान का स्वरूप ही ज्ञानमय है। आप कहेंगे कैसे समझ में आएगा? भक्ति करने से। सिद्धांत तो आप बुद्धि से समझ लेंगे, लेकिन जब हम भक्ति करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे भगवान का नाम ज्ञानमय है, आप कहेंगे ऐसा क्यों? जब हम भगवान को नाम उच्चारण करते हैं, नाम को सुनते हैं, तो हम देखते हैं धीरे धीरे हमारा ज्ञान नष्ट हो रहा है, होता है कि नहीं होता है? और अन्यथा आप देखेंगे कि बाकी जो शब्द बोल रहे हैं उससे हमारा कोई ज्ञान नष्ट नहीं होता। और आप कहेंगे भगवान का नाम आनंदमय है, क्या आपने अनुभव किया है इसको? यस। क्या मतलब इसका? आप समझ गए ना? सिद्धांत से आप नहीं समझा सकते, जब हम जब करेंगे तब उसका अनुभव कर लेंगे। जो हरि नाम का सुख है वो अनुभव करके ही समझ में आएगा। तो किस प्रकार से भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, अगर आप पूछें किस प्रकार से है, कैसे समझा जाए, तो फिर तो भक्ति के अनुभव के द्वारा ही आप समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चलिए स्टॉप हियर।